अरमान ने आस्था से कहा, अपने कपड़े उतारो। आस्था का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। अरमान ने उसके ऊपर पानी डाला था और वो उन गीले कपड़ों में सिमटी हुई थी। अरमान शायद आस्था की स्थिति समझ गया था। उसने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने तुमसे क्या कहा? अभी इसी वक्त अपने कपड़े उतारो। मैं जानता हूं कि तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता। ये तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं साड़ी पहनने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये कहकर उसने आस्था के मन में उठ रहे डर को थोड़ा कम करने की कोशिश की। आस्था हैरानी से मुंह खोले उसकी ओर देखने लगी। मन ही मन उसने कहा, कितना बेशर्म आदमी है ये। फिर हल्की और धीमी आवाज में उसने अरमान से पूछा, लेकिन आपको देखकर तो लगता नहीं है कि शायद आप साड़ी पहनते होंगे, फिर आपको साड़ी बांधना कैसे आता है? अचानक आस्था के इस सवाल पर अरमान गुस्से और नफरत से आस्था की ओर देखने लगा। वो सोचने लगा कि ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या फिर ये मासूम होने का दिखावा कर रही है। उसे जल्द से जल्द दादाजी के पास आस्था को लेकर जाना था। बिना आस्था की कोई बात सुने अरमान अपने अलमारी के पास चला गया। वहां उसने अलग अलग तरह की एक से बढ़कर एक महंगी और ब्रांडेड साड़ियां देखी। उसने एक साड़ी निकाल ली और चिढ़कर कहा, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है। फटाफट से अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दरअसल अरमान का इरादा था कि वो अपनी आंखें बंद करके आस्था को मार्गदर्शन करेगा, लेकिन वो अपनी ये बात आस्था को नहीं बोल पाया। उसकी शक्तिशाली व्यक्तित्व और आभा उसे ये बात कहने की इजाज़त नहीं दे रही थी। इसलिए अपनी छवि बरकरार रखते हुए उसने आस्था को कपड़े उतारने के लिए कह दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आस्था ने मन ही मन कहा। वो हैरानी से अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी और सोचने लगी, हे कान्हा जी, हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए। हम इस निर्दयी इंसान के सामने अपने कपड़े कैसे उतार सकते हैं? क्या इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? किसी लड़की को ऐसे कैसे कपड़े उतारने के लिए कह सकते हैं? आस्था बार बार अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कुछ पागलपन भरे विचार सोच रही थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वो अरमान की ओर देखकर बोली, वो निर्दयी जी। मन में अरमान को निर्दयी कह रही थी, वही शब्द उसकी जुबान पर आ गया था। अरमान उसकी बातों का मतलब नहीं समझा। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? आस्था जल्दी से अपनी बात सही करते हुए बोली, वो हमारा मतलब है अरमान जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें बालकनी से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरमान ने एक भौं उठाकर उसकी ओर देखा और पूछा, आवाज? कैसी आवाज? आस्था जल्दी से बोली, ये तो हमें नहीं पता कैसी आवाजें हैं, पर हमने कुछ आवाजें वहां से जरूर सुनी हैं। अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखता हुआ बालकनी की ओर जाने लगा। अरमान के जाते ही आस्था थोड़ा सा मुस्कुराई। मन ही मन उसने कहा, भाग आस्था भाग, कहीं शैतान तुझे देख न ले और फिर तुझे कपड़े उतारने को ना बोलने लगे। ये सोचते ही आस्था ने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर जाने के लिए दौड़ लगा दी। वो सीधा सीढ़ियों से दादाजी के पास जाकर खड़ी हुई और हांफने लगी, जोरों से लंबी लंबी सांस लेने लगी। अरमान ने आस्था को इस तरह भागते हुए देखा तो उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और गुस्से से कहा, एक मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत, इसने मुझसे झूठ कहा, इस लड़की को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अरमान का गुस्सा बढ़ गया था। वो गुस्से से अपने सीधे हाथ के दो उंगलियों को अपने माथे पर टैप करने लगा और मन ही मन कहने लगा, इस दो कोड़ी की लड़की ने इतनी हिम्मत की, इसने अरमान सिंघानिया से झूठ बोला, इसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। खुद को थोड़ा सा काबू में करते हुए वो जल्दी से नीचे हॉल में जाने लगा। दादाजी और बाकी सब आस्था को इस तरह घबराया हुआ देखकर हैरान हो गए। दादाजी ने आस्था को देखकर राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि कहीं अकेले में अरमान ने आस्था का कत्ल ना कर दिया हो, लेकिन अब आस्था को सही सलामत देखकर उन्हें राहत मिली। ध्रुव जल्दी से आस्था से पूछने लगा, क्या हुआ भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं और आप इतना तेजी से दौड़कर क्यों आ रही हैं, मानो जैसे कि आपके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। आहान ने आस्था को हांफते हुए देखकर जल्दी से एक गिलास पानी उसके लिए लाया और उसके हाथ में थमा दिया। उसने पूछा, क्या बात है भाभी, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं और आप इतना ज्यादा किससे डर रही हैं? इससे पहले कि आस्था जवाब दे पाती, अरमान वहां आ गया। उसने अपने दोनों हाथों को जेब में डाल रखा था और खामोशी से दादाजी के पास आकर खड़ा हो गया। आस्था की नजर अरमान पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। आहान ने जो पानी दिया था उसने थोड़ा सा पी लिया था, लेकिन जैसे ही उसने और पानी पिया अचानक से उसके गले में फंस गया और वो जोरों से खांसने लगी। आकाश और सुमित जल्दी से आस्था के आसपास खड़े हो गए। आकाश आस्था का सर सहलाने लगा और सुमित आस्था की पीठ रब करने लगा। अरमान ने आकाश और सुमित के हाथों को देखा और उन दोनों को गुस्से से घूरने लगा। आकाश और सुमित को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उन्होंने अरमान की ओर देखा
और घबराकर आस्था के सर और पीठ से हाथ हटा लिया। फिर दोनों एक तरफ खड़े हो गए और एक दूसरे को चोरी छिपे नजरों से देखने लगे, इशारों में बातें करने लगे। आस्था ठीक हो गई। ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ है भाभी, आप ठीक तो है ना? आस्था ने कहा, जी ध्रुव जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली हमारे कमरे में एक चूहा आ गया था और हम उससे इतना ज्यादा डर गए कि हम आपको क्या बताएं, इसलिए हम दौड़कर सीधा यहाँ आ गए। आस्था के भोलेपन में अरमान की जगह चूहे का नाम लेने पर अरमान के अंदर खून उबलने लगा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे चूहा बोलने की। दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट करें।